चर्चा का विषय है।
बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
जी। धन्यवाद।
धन्यवाद आनंद जी।
अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है, आतंकवाद को सिरे से ना करना। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत के ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स, वी विल शेयर नॉलेज and exchange best practices, we will cooperate on training and building institutions, we will discuss regulatory issues and promote common standards, we will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms, we will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
थैंक यू सर।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
चर्चा का विषय है।